ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव चर्फिल बार्तोजोवस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान परमाणु हथियार इस्तेमाल न किए जाने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। श्री बार्तोजोवस्की ने वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की मध्यस्थता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत के तटस्थ रुख और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूती मिली है। श्री बार्तोजोवस्की ने भारत के कई सफल निकासी और मानवीय सहायता मिशनों की भी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। रूस ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के लिए रविवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की योजना की घोषणा की थी। भूमि और ऊर्जा संयंत्रों पर बातचीत वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगे। गजा पर कल रात हुए इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 400 हो गई है और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के विफल होने के बाद ये नया हमला हुआ है। हमास और इजरायल के बीच 19 जनवरी के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। इसी दिन इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू हुआ था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को मान्यता दिए जाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र में उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत न्यूजीलैंड आर्थिक मंच में कहा कि यदि दोनों देश पूरक अर्थव्यवस्थाओं की भावना से काम करें तो अगले 10 वर्षों में 10 गुना वृद्धि हासिल कर सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है। पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार मणिपुर में शांति और खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के प्रति अधिक संवेदनशील है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों के पास आकस्मिक कोष की व्यवस्था है जिसे वे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मणिपुर के पास कभी इस प्रकार का कोई कोष नहीं रहा है, इसलिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेलवे ने पिछले 10 वर्ष में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अच्छी वित्तीय स्थिति में है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश में 2020 से यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में काफी किफायती है। लोकसभा और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री वैष्णव ने कहा कि AI कोष नामक एक डेटा सेट बनाया जाएगा जो लोकसभा में बहस का किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होगा। बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज 1131 अंक बढ़कर 75,301 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 325 अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।